वैष्णव पंथ का शैव पंथ से अलगाव और एक अलग संप्रदाय के रूप में विकास अलवारों के कारण हुआ। उन्होंने अपने विचार अधिकतर संस्कृत महाकाव्यों और पुराणों से लिए। उनकी कविताएं 10वीं सदी में एकत्र की गईं। उन्हें भी 2 या 3 सदियों के बाद तक संग्रहित किया गया, जब उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की गईं और मोक्ष के लिए ध्यान करने हेतु उनकी प्रार्थना की गई। अलवार विष्णु के पक्के उपासक थे और उनमें से अधिकतर बौद्ध धर्म और जैन धर्म और शैव धर्म के प्रखर विरोधी थे। उनमें से कुछ नीची जातियों के थे, कुछ ब्राह्मण थे। आंडाल नाम की एक महिला थी और कुलशेखर नामक एक राजा था। तिरुमनपई ने सबसे अधिक कविताएं लिखी और नम्यालवर अग्रणी संत थे। नम्मा के काव्यों को 4 वेद माना जाता है। वैष्णव संतों की कविताओं में शैव का ही सोच और भावना है, किंतु उन्होंने शिव के स्थान पर विष्णु को रख दिया और सभी देवताओं से ज्यादा उनकी स्तुति की। अवतार के संबंध में भी उनके अलग विचार थे, जबकि विष्णु मनुष्यों की दक्षा के लिए पृथ्वी पर कई बार अवतरित हुए। शिव ने ऐसा नहीं किया और वैष्णव तरीके से तो निश्चित ही नहीं। उनके उपदेशों के कुछ उद्धरण नीचे दिए गए हैं। उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना और ईश्वर की कृपा पर भरोसा का संकेत मिलता है। अंतरिक्षों के महान स्वामी, आपने मेरे हृदय को अपना बना लिया है। मेरे साथ आपका संबंध इतना आत्मीय है कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कभी न त्यागे। मैं इतने प्रेम पूर्वक आपसे संलग्न हूँ। नम्मा, चूंकि मैं कटकाई की स्वामी पर मोहित हो गया हूँ, जिसके मार्ग लाला लीला से सुगंधित है, मेरा हृदय उसकी आश्चर्यजनक कृपा के लिए विगलित हो रहा है। फिर मैं कैसे अपने व्याकुल प्रेम को दबा सकता हूँ? मैं और मेरे की त्रुटियों को निर्मूल करके ईश्वर से मिल जाओ। यदि लोग ईश्वर से प्रेम के नशे में हैं, उन्हें सड़कों पर पागल मनुष्यों के समान नृत्य करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर सकते तो वे प्रेम से पीड़ित नहीं हैं। ईश्वर से भक्त का रिश्ता पैदा वैसा ही ईश्वर से भक्त का रिश्ता वैसा ही है जैसा पत्नी का अपने पति से होता है। अभी तक आपकी अपनी प्रेमिका के प्रति पर्याप्त सहानुभूति नहीं रही है। आपकी उदासीनता के कारण वह प्राण न त्यागे। उसके लिए आप इतनी कृपा तो करें कि आप अपनी प्रेमिका को कृपा निधान अपने संदेश वाहक और वाहन गरुड़ के माध्यम से संदेश भेजे कि वह निराश न हो, बल्कि वह आशा की अनुरुद्ध जल्दी ही आपके लौटने तक कुछ हिम्मत रखे। हे ईश्वर, आप कृपा करके अपने भक्तों की विनम्र याचना सुने। हे श्रीरंग के स्वामी, गजेंद्र को मुक्ति दिलाने वाले, अपनी चेतन निद्रा से उठने की कृपा करें और अपने सेवकों पर कृपा दृष्टि डालें। मैं यदि किसी से विवाह करूंगी तो परमात्मा से ही करूंगी। तमिल प्रदेश के कवि उस शक्तिशाली धार्मिक भावना के सर्जक थे जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देश से निष्कासित कर दिया। उनके समानांतर जो महान विद्वान हुए, उन्होंने ऐसे बौद्धिक उपकरण बनाए जिसके जरिए हिंदू धर्म ने संघर्ष किया और विजयी हुआ। उनमें सबसे प्रारंभिक और अत्यंत उल्लेखनीय थे शंकर। मलाकार तट पर अलवार नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित कलाडी नामक गांव में शिव गुरु नामक एक नंबूदिरी ब्राह्मण अपनी पत्नी आर्यम्बा के साथ रहता था। शंकर उनका बेटा था जो 8वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में कभी पैदा हुआ था। बचपन से ही पिता की मृत्यु हो जाने से माँ ने ही उसका लालन पालन पोषण किया। ऐसा लगता है कि उसने शंकर को बहुत प्रेम दिया और उसकी शिक्षा दीक्षा की अच्छी व्यवस्था की। शंकर एक अकाल प्रौढ़ बालक था और अपने शिक्षकों के द्वारा दी गई शिक्षा को उसने जल्दी आत्मसात कर लिया। सीखने की उसमें असीम इच्छा थी और जल्दी ही वह संसार के दुख से आक्रांत हो गया। उसने घर त्याग दिया और सन्यासी हो गया और गौड़पाद के शिष्य गोविंद योगी को अपना गुरु बना लिया, जो नर्मदा के तट पर रहता था। उन्होंने तपस्वी जीवन के सभी चरणों को तेजी से पार किया और उनके गुरु ने उसे परमहंस की पदवी दी। उसके बाद उन्होंने सारे भारत की यात्रा की और सभी संप्रदायों और पंथों के धर्म गुरुओं से चर्चा की। उनके जीवनी लेखक आनंद गिरी ने लगभग 50 विभिन्न संप्रदायों को उल्लेख किया है जिनके साथ शंकर ने शास्त्रार्थ किया, पृष्ठ संख्या 96, और जिन्हें पराजित करके उन्होंने दिग्विजय प्राप्त की। शंकर ने संसार त्याग के पहले कई बार मालाबार का भ्रमण किया। ऐसे ही एक बार वे अपनी माँ के निधन के समय आए थे। कहानी यह है कि चूंकि वे सन्यासी थे, इसलिए उनके द्वारा माँ का अंतिम संस्कार किए जाने पर ब्राह्मणों ने आपत्ति की, किंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनका नाम मलाबार में महान सुधारों से जुड़ा है और जनश्रुतियों के अनुसार उस प्रदेश में जो कोलमम युग 825 ईस्वी में शुरू हुआ, उससे इन सुधारों का नया अध्याय शुरू होता है। इन सुधारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बौद्ध धर्म का निष्कासन और उससे और अन्य संप्रदायों से जुड़े अनुष्ठानों का अंत। वे साधुओं की मठ परंपरा के भी आयोजक थे और उन्होंने सभी जातियों से सन्यासी बनकर बनाए जाने किंतु उन्होंने जातियों से सन्यासी बनाए जाने किंतु उन्होंने महिलाओं को साधु जीवन से अलग रखा। यदि वह कथा की एक चांडाल उसने उनसे गंगा के किनारे मिला और उनसे पूछा कि उन्होंने अपने उपदेश और व्यवहार में अंतर क्यों रखा, तो ऐसा लगता है कि उनका झुकाव समाज सुधार की ओर भी था। उन्होंने मनुष्य पंचक में लिखा है तो ऐसा लगता है कि उनका झुकाव समाज सुधार की ओर भी था उन्होंने मनुष्य पंचक में लिखा है जिसने इस प्रकाश में चमत्कार देखना सीख लिया है वह मेरा सच्चा गुरु है, चाहे वह चांडाल हो या द्विज हो, या यह मेरा विश्वास है। दंत कथाओं से भरे उनके जीवन पर विचार करने पर संकेत मिलता है कि शंकराचार्य प्राचीन रीतियों के अंधनुगामी नहीं थे। उन्होंने सावधानी से बदलाव लाने का प्रयास किया। लगता है कि उन्हें रूढ़िवादी ब्राह्मणों के विरोध और निंदा का सामना करना पड़ा। 9वीं सदी की शुरुआत में युवा अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो गई। शंकर का जीवन संस्कृत ज्ञान के इतिहास में एक महान जल विभाजक है। उनके पीछे प्राचीन विचारों, अनसुलझी पद्धतियों, गहरे किंतु बिखरे विचारों, आधिपत्य के लिए जूझने, प्रतिद्वंदियों, बदलते हुए देवकुल और धर्मशास्त्रों की अस्थिर स्थिति, अपनी उर्वरता में अराजक एक जीवंत संस्कृति का संसार है और उनके सामने निश्चित विचारों, स्थिर पद्धतियों, विद्वता, पूर्ण प्रवीणता, विस्तार न की वृद्धि, स्पष्टीकरण न की अन्वेषण, टीकाएं न की दर्शन और रूढ़िबद्ध एकात्मकता का मध्यकालीन संसार है। संस्कृति की जीवंत धारा संस्कृत के प्राचीन आधार भूमि को छोड़कर नए मार्गों से होकर बहती हैं। दक्षिण में तमिल, तेलुगु और कन्नड़, उत्तर में हिंदी, बंगाली, मराठी और उर्दू, किंतु आधार भूमि को पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ा गया। लगातार क्षीण होती एक धारा पुरानी आधार भूमि में निरंतर शेष रही। यदि चिंतन की पद्धतियों को घटनाओं का कारण मान लिया जाए तो शंकर के दर्शन ने बौद्ध धर्म पर घातक प्रहार किया और हिंदू संप्रदायों को एक साथ लाने का प्रयास किया। शंकर के प्रयासों का एक उद्देश्य हिंदू धर्म की घातक कमजोरियों पृष्ठ संख्या 97 को और उसके धार्मिक संप्रदायों को विघटनकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करना था। इन सभी संप्रदायों की सत्ता का एक ही स्रोत था श्रुति। उन्होंने एक दूसरे से असहमत हो रही सभी पद्धतियों को उखाड़ फेंकने और एक तर्कपूर्ण पद्धति को स्थापित करने में अपने तीक्ष्ण विश्लेषणात्मक मस्तिष्क और अपने अतुलनीय शास्त्रार्थ कौशल का उपयोग किया। उनकी प्रतिभा को इतनी आश्चर्यजनक मान्यता दी गई कि बाद के सभी चिंतकों ने अपने चिंतन का प्रस्थान बिंदु शंकर को माना और अपनी शक्ति को कमोबेश उनके सिद्धांतों और व्याख्याओं को स्थापित करने, सुधारने या गलत सिद्ध करने में लगाया। ऐसा करने में वे सभी शंकर के चिंतन के तरीकों और उनकी व्याख्याओं की पद्धतियों के रंग में रंग गए। शंकर को यह स्थापित करना था कि हिंदुओं के पवित्र वेदों की निरंतर एक ही शिक्षा है। विचारधाराओं में जो अंतर है वह गलतफहमी और सच्ची अंतर्दृष्टि की कमी के कारण है। उनके अनुसार एकेश्वरवाद हिंदू धर्म शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक ऐसा एकेश्वरवाद जो समझौता नहीं करता, परम रूप है और आदर्शात्मक है। ईश्वर एक है और उसके अतिरिक्त कोई नहीं है। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और शेष सब भ्रांति है। ईश्वर का स्वभाव पूर्ण रूप से समांगी है। वह शुद्ध है और शुद्ध प्रज्ञा है। उसके कोई गुण नहीं है। वह सोचता है और न जानता है, बल्कि वह स्वयं विचार या ज्ञान है। संसार एक कल्पना है, एक छलावा है और सभ्य नहीं है। वह यह माया के सिद्धांत से निकला है। माया ने स्वयं में संशोधन करके लोगों को उत्पन्न किया, जिनके नाम और रूप भिन्न भिन्न हैं। लोगों से संपूर्ण ब्रह्मांड बना। वास्तव में लोगों की बहुलता केवल दिखावे की है और वास्तव में वे एक हैं। चेतनाधारियों की बहुलता भी उतनी ही भ्रामक है। मानवी स्व ईश्वर से एक रूप है और उसका अलग अलग होना माया है और उसकी सच्चाई ब्रह्मा है। अज्ञान के कारण मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता और उस गोचर जगत में दुखी रहता है जो भ्रम की रचना है। जब तक वह अज्ञान रहता है तब तक गोचर के भार का दबाव पड़ता है। गोचर सत्य प्रतीत होता है और अज्ञान के दौरान उसका ख्याल रखना पड़ता है। इस गोचर जगत का एक देवता होता है ईश्वर, जिसमें सद्गुण होते हैं। वह सर्जक है जो संसार को चक्रीय रूप से विकसित करता है और नष्ट करता है। मानव आत्मा पुरस्कार और दंड के लिए, कृपा और क्षमा के लिए उसकी ओर ताकती है। वह ईश्वर के ज्ञान के जरिए अपनी मंशा पूरी करती है। इस प्रकार दो प्रकार के जगत हैं, एक वास्तविक और दूसरा अवास्तविक। ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक ऊंचा जो अज्ञान को दूर करने के लिए और पूर्व ब्रह्म की प्राप्ति के लिए होता है और दूसरा निम्न, ईश्वर की कृपा पाने के लिए। किंतु निम्न ज्ञान और उसका लक्ष्य ईश्वर दोनों काल्पनिक हैं और वास्तविक। पृष्ठ संख्या 98। मुक्ति उससे ऊपर सत्य तक उठकर ही प्राप्त होती है। आत्मा के अतिरिक्त चूंकि मस्तिष्क और बुद्धि जो संज्ञान के सामान्य उपकरण हैं, माया की उपज हैं, इसलिए उच्च ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक मस्तिष्क की गतिविधियां पूरी तरह नियंत्रित नहीं हो जाती और रोक नहीं दी जानी। जब मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और उस पर कोई और छाप नहीं पड़ती, गहरी समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तब आत्मा परम के साथ एकात्म होने का अनुभव करती है और गोचर के भ्रम से स्वयं को मुक्त कर लेती है। शंकर ने एक तर्कपूर्ण एकेश्वरवादी पद्धति का प्रतिपादन किया, किंतु जिस कीमत पर ऐसा किया गया वह बहुत ज्यादा थी। एक ओर तो ईश्वर की एकता को अमूर्तता की इतनी ऊंचाई तक उठा दिया गया कि जिससे साधारण जन चकाचौंध हो गया, दूसरी ओर निम्न अच्छाई और निम्न सत्य के संसार को स्वीकार करने करके इस आदर्शवाद को हल्का बनाकर उन्होंने गरीब मनुष्य को हाथ पैर बांधकर पुरोहित और उसके जटिल अनुष्ठानों की दया पर डाल दिया। उन्होंने सामने के द्वार से जो भी चीज बाहर निष्कासित करने की कोशिश की, वे पीछे के द्वार से फिर से भीतर प्रविष्ट कर गए। उन्होंने इसकी आलोचना करना तो प्रारंभ किया, किंतु वे उन प्रथाओं और सिद्धांतों का समर्थन करते रहे जो केवल निर्बल और अज्ञानियों के लिए उपयुक्त थी। शंकर की पद्धति को अनोखी सफलता मिली। अवधारणा के वैभव, ज्ञान के विस्तार और अपने दर्शन की तीक्ष्णता के जरिए यह लोगों की कई पीढ़ियों पर हावी रही। भारतीय मस्तिष्क पर इसकी जो छाप पड़ी, उसकी ताजगी को समय ने अभी तक फीका नहीं किया है। शंकर ज्ञान मार्ग के महान प्रतिपादक थे और विद्वानों और दार्शनिकों पर वेदांत की उनकी व्याख्या का असाधारण प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के बहुसंख्य स्मार्त उनके अनुयायी बन गए, किंतु अलवार और अडियार प्रेम और भक्ति के जिस धर्म को लोकप्रिय बना रहे थे, उसके दर्शन के भी प्रतिपादक थे जिन्होंने शंकर के सिद्धांतों का विरोध किया। ये लोग वैष्णव आचार्य और शैव सिद्धांत के आचार्य थे। वैष्णव आचार्यों में पहले नाथ मुनि थे, जो 10वीं सदी में श्रीरंगम में रहते थे। उनके पोते और उत्तराधिकारी यमुना मुनि थे, जो अलवंडर के नाम से जाने जाते थे। वे रामानुज के गुरु थे और उन्होंने माया के सिद्धांत को गलत सिद्ध करने के लिए और भक्ति धर्म स्थापित करने के लिए रामानुज को बादरायण द्वारा की गई ब्रह्म सूत्रों की टीका लिखने का निर्देश दिया। रामानुज का जन्म मद्रास के पास तिरुपति या पेरुम्बूर में 1016 में हुआ था। उसके पिता केशव हरित परिवार के द्रविड़ ब्राह्मण थे और उनकी माँ का नाम कांतिमती था। वे पहले यादव प्रकाश के शिष्य बने, जो कांजीवरम में शंकर के अनुयायी थे, किंतु पवित्र अंशों की व्याख्या को लेकर रामानुज अपने गुरु से सहमत नहीं हुए और उन्हें कक्षा से निकाल दिया गया। इसके बाद श्रीरंगम में अध्यापन कर रहे यमुना मुनि ने रामानुज को अपना शिष्य बनने के लिए आमंत्रित किया। इसके शीघ्र बाद यमुना मुनि का निधन हो गया और रामानुज को उनका उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। वे तब तक अध्ययन और अध्यापन करते रहे जब तक कि उन्होंने टीकाएं लिखने के लिए अपने गुरु के निर्देशों का पालन करने में स्वयं को उपयुक्त नहीं समझ लिया। इसके बाद उन्होंने वेदांत संग्रह, वादरायण के वेदांत सूत्रों के भाष्य और भगवद गीता की रचना की। लेखक बनने के पहले वे संन्यास ग्रहण कर चुके थे और अब उन्होंने अपने शिष्यों के साथ यात्राएं शुरू की। उन्होंने कश्मीर तक कई प्रदेशों की यात्राएं की और फिर श्रीरंगम वापस आ गए। यहाँ चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम ने उन्हें दंडित करने की धमकी दी, क्योंकि वह चाहता था कि वे वैष्णव पंथ त्याग कर शैव हो जाएं। रामानुज ने होयसल यादव शासक के राज्य में शरण ली और बल्लादेव के भाई ट्विल देव को दीक्षित किया। 1118 में कुलोत्तुंग प्रथम के निधन के बाद रामानुज श्रीरंगम लौट गए और वहीं 1137 में उनकी मृत्यु हो गई। रामानुज की शिक्षाओं का उद्देश्य शंकर के पूर्ण एकेश्वरवाद और मायावाद का खंडन करके वेदांत दर्शन के भीतर भक्ति की स्थापना करना था। इसके साथ ही वे वैदिक साहित्य में वैदिक पंचरात्र के लिए मान्यता भी चाहते थे। उनके अनुसार ब्रह्म एक ऐसा परम सत्य है जो स्वभाव और गुणों में अतुलनीय महानता रखता है और वह ईश्वर है और एक विश्वात्मा के रूप में पुरुषोत्तम है। उसमें कमियां नहीं है और उसमें अतुलनीय श्रेष्ठता के असंख्य सद्गुण हैं। अपनी इच्छाओं और उद्देश्यों को पाने के लिए उसके पास बिना शर्त असीमित शक्ति है। वह सृजन करता है, विनाश करता है और रक्षा भी करता है। वह शून्य से सृजन नहीं करता, क्योंकि से सृजन करना अकल्पनीय है। उसके द्वारा किए गए सृजन का अर्थ है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन, अर्थात कारण में अस्तित्व से कार्य में अस्तित्व। पहले ईश्वर ही था और दूसरा कोई नहीं था, किंतु ईश्वर के भीतर से प्रकृति और जीव निकले, जो ईश्वर की देह निर्मित करते हैं। वे दोनों सत्य हैं, वे ईश्वर को बांधते नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं और अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर हैं। हर कल्प के बाद संसार विलुप्त हो जाता है और स्थूल वस्तु सूक्ष्म हो जाती है और अंत में तमस नामक परासूक्ष्म पदार्थ ही शेष रह जाता है। यह ब्रह्म का शरीर है, किंतु वह इतना सूक्ष्म होता है कि उसे किसी अन्य नाम से संबंधित नहीं किया जा सकता है और वह पहले के समान अस्तित्वहीन था। कारण कि इस स्थिति में ब्रह्म एक है और उसके समान दूसरा नहीं है, क्योंकि तमस का कोई नाम और रूप नहीं होता और वह अस्तित्वहीन है। फिर ब्रह्म अनेक बनने की पृष्ठ संख्या 100 इच्छा करता है और स्वयं को कार्य रूप में परिणत कर लेता है। नामों और रूपों के समग्र संसार में सृजन में कार्य कारण के विकास से अधिक नहीं है। ध्यान और उपासना के लिए ईश्वर 5 अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। एक परा या सर्वोच्च, जिसमें वह नारायण के रूप में देवी देवताओं, शाश्वत आत्माओं और विमुक्त आत्माओं से घिरा होता है। 2 ब्यूस या परा के रूप में वासुदेव, संकर्षव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के 4 रूपों में। 3 विभव या नारायण के अवतारों के रूप में। 4 अंतर्यामी के रूप में, जिस माध्यम में वह हृदय में रहता है और योग साधना में देखा जाता है। और 5 पूजा के लिए स्थापित मूर्तियों के रूप में। आत्माएं ब्रह्म का ही रूप हैं, वे 5 वर्गों में विभाजित की गई हैं। 1 नित्य, जो जन्म और मृत्यु के चक्र में प्रवेश नहीं करती। 2 मुक्त, जिन्होंने अपनी वेड़ियां तोड़ दी हैं और सेवक के रूप में ईश्वर की सेवा में रहती हैं। 3 केवल, जिन्होंने अपने हृदयों को पवित्र बना लिया है और जो जन्म और मरण से मुक्त है। 4 मुमुक्षु, जो मुक्ति चाहते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 जो अभी भी बंधन में हैं। आत्मा चेतन है, स्वयं प्रकाशित, आनंदमय, शाश्वत, आण्विक, इंद्रियों से परे, अपरिवर्तनीय, ज्ञान का कल्पनातीत, ईश्वर के अधीन, अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर पर निर्भर और ईश्वर का गुण या रूप है। आत्मा भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करती है। वह पहले त्याग और कर्म के द्वारा एकाग्रता और ज्ञान प्राप्त करती है, जिससे भक्ति प्राप्त होती है। केवल 3 ऊंची जातियां ही भक्ति का अनुपालन कर सकती हैं। दूसरी जातियों के लिए समर्पण का यानी प्रपत्ति का मार्ग था, जिसमें आचार्य पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। इस मार्ग का एक अंत गौरवशाली मुक्त से होता है, जिसमें आत्मा ईश्वर की उपस्थिति में शाश्वत धन्यता का आनंद लेती है, ईश्वर के आनंद में सहभागी होती है और सृजन को छोड़कर उसके शक्तियों में हिस्सा बटाती है तथा सभी वर्जनाओं और आदेशों को पार करके ब्रह्मांड में विचरण करती है। रामानुज यद्यपि अभी भी ऊंची जातियों के प्राचीन विशेषाधिकारों को मान्यता देते थे, किंतु उन्होंने शूद्रों और अछूतों के लिए एक मार्ग खोल दिया। उन्होंने व्यवस्था दी कि अछूत लोग साल के निश्चित दिनों में कुछ मंदिरों में जा सकेंगे। उन्होंने सतानियों को उपदेश दिया जो शूद्र थे और उनके संप्रदाय से जुड़े थे। प्रपत्ति के संबंध में उनके शिक्षाओं के कारण 2 विचारधाराएं बन गईं। उत्तर की शाखा का मत है कि ईश्वर की कृपा सहकारी है, अर्थात मुक्ति की प्रक्रिया उसकी इच्छा करने वाले व्यक्ति के कर्म से प्रारंभ होना चाहिए। दक्षिणी शाखा का मत है कि ईश्वर को भक्ति की आत्मा पर पूरी तरह से अधिकार कर लेना चाहिए और उसे अपनी तरफ ले जाना चाहिए। भक्त का काम है स्वयं का पूर्ण समर्पण। उत्तर वाले प्रपत्ति को मुक्ति के कई मार्गों में से एक मार्ग मानते हैं, जबकि दक्षिण वाले उसे एकमात्र मार्ग मानते हैं। नीची जाति के नीची जाति के लोगों के प्रति उनके व्यवहार के संबंध में और अन्य बातों में भी उनमें मतभेद है। रामानुज के एक कनिष्ठ समकालीन निम्बार्क भक्ति के सिद्धांत को आगे ले गए। दार्शनिक रूप से उनकी पद्धति भेदाभेद के नाम से जानी जाती थी, अर्थात द्वैताद्वैत, अर्थात ईश्वर आत्मा और अचेतन विश्व एक होने पर भी भिन्न है। धर्म में उन्होंने प्रपत्ति अर्थात आत्मसमर्पण के सिद्धांत को और कृष्ण और राधा की उपासना को महत्व दिया। निम्बार्क यद्यपि मूल रूप से वेल्लारी जिले में जन्मे एक तेलांग ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना अधिकतर जीवन उत्तर में अर्थात मथुरा के पास वृंदावन में बिताया। वहां से राधा और कृष्ण का संप्रदाय उत्तर में और बंगाल में फैला। आनंद तीर्थ या महत्व ने शंकर के अद्वैत एकेश्वर प्रसाद और रामानुज के द्वैत एकेश्वरवाद को नकार दिया और एक स्पष्ट द्वैतवाद की स्थापना की, जो मुख्यतः भागवत पुराण पर आधारित थी। उनका उद्देश्य ईश्वर की स्वतंत्रता और भव्यता पर जोर देना था, जिसे उनके पूर्ववर्ती विद्वानों ने कमजोर करके ईश्वर को ब्रह्मांड का भौतिक कारण बना दिया था। माधव की अवधारणा के अनुसार ईश्वर वह सत्ताधारी है जो संसार पर शासन करता है और जिसकी कृपा मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अनेक वैष्णव आचार्यों ने इस सिद्धांतों को विकसित किया और भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया। ये थे विष्णु स्वामी, पिल्लई लोकाचार्य, वेदांत देवशिक और बाद के सदियों में और भी अनेक। शैव आचार्यों में सबसे पुराने थे नंबियानदार। नंबी जो नाथ मुनि के समकालीन थे, उन्होंने शैव कविताओं को देवारम और तिरुमुराई में संकलित किया, किंतु पहले शैव धर्मशास्त्री मेकंदर देव थे जो शूद्र थे और 13वीं सदी में मद्रास के उत्तर में पेन्नार नदी के तट पर रहते थे। उन्होंने संस्कृत के रौख आगम सूत्रों को तमिल में अनुदित किया और उसका नाम शिव ज्ञान बोध रखा। उनके शिष्य अरुल नंदी देव ने अपने गुरु के ग्रंथ की टीका लिखी और अन्य विचारधाराओं की आलोचना करते हुए खंडन मंडन ग्रंथ की रचना की। अरुल नंदी के एक शूद्र शिव शिष्य शैव सिद्धांत नामक एक अन्य कृति के लेखक थे और शूद्र के शिष्य ब्राह्मण उमापति थे जो संप्रदाय के महानतम धर्मशास्त्री थे। तमिल शैव सिद्धांत कश्मीर शैव विचारधारा से संबद्ध था जो 9वीं और परवर्ती सदियों में उत्पन्न हुआ था। दोनों का केंद्रीय सिद्धांत पति पशु और पास की त्रिमूर्ति था। जिस पद्धति में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था वह वैष्णव पांचरात्र से समानता रखता था, किंतु शैव सिद्धांत का जो आध्यात्म हो व्यवहारिक धर्म प्रेम और भक्ति का था। उसके मुख्य तत्व थे एक शिव और उनकी कृपा पर आस्था, दो गुरु पर अनन्य विश्वास, तीन प्रेम पूर्ण भक्ति और उपासना, योग अनुशासन जो एकाग्र हो और उसके साथ गीत नित्य और योग हो, 4 सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता, 5 धर्म के बाहरी रूप कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध, 6 जाति या पंथ का या सांसारिक दर्जे के भेदभाव के बिना सभी के साथ धार्मिक समानता। उत्तर के गंभीर चिंतनपूर्ण भक्तिवाद से लेकर दक्षिण के जोशीले और विस्फोटक आवेग के भक्ति धर्म तक की जो यात्रा भारतीय मस्तिष्क ने की है वह महान है। दोनों में रहस्यवाद का स्वर स्पष्ट है, किंतु रहस्यवाद जो सार्वभौम और शाश्वत है वह मानव इतिहास के सभी कालों और सभी संस्कृतियों की में दृष्टिगोचर होता है। यह मानव मस्तिष्क की एक गतिविधि है जो अस्पष्ट और गौर तलब रूप में समझी गई है और जो उन अंधेरे क्षेत्रों से पैदा हुई जिसे बुद्धि के अतिक्रमण से सावधानी पूर्वक रक्षा की गई है। यह अवचेतन अहम का एक रूप है, सूक्ष्म चेतना का कार्य है। रहस्यवादी भावना वहां वास करती है जहां कामुकता, काम भावना, भय और कामना का निषेध होता है। इस प्रकार यह विश्वव्यापी महत्व का है और इसका इतिहास वही है जो मनुष्य का है। इतिहास में रहस्यवाद के उद्भव और देशांतरों पर चर्चा करने की कोशिश स्पष्टतः व्यर्थ है, क्योंकि रहस्यवादी अनुभूति सभी धर्मों में निहित है, किंतु रहस्यवाद परिवर्तनशील होता है। वह कई रूपों में अभिव्यक्त होता है। भिन्न भिन्न भूमियों में उसके बौद्धिक सूत्र और सिद्धांत अलग अलग होते हैं। वह भिन्न भिन्न वाक्यांशों और मुहावरों का उपयोग करती है और ऐसा करने में वह भाषा और बिंब उधार लेता है, धर्म के कुछ अंशों पर बल देता है और कुछ की उपेक्षा कर जाता है। रूप और अभिव्यक्ति में होते संशोधन को देखना और एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति का जो ऋण है उसका विवरण देना संभव है। उत्तर में प्राचीन काल में और दक्षिण में प्रारंभिक मध्य काल में भावना प्रधान धर्म भक्ति मार्ग के बारे में ऊपर बताया गया है। संत कवियों और चिंतकों के माध्यम से धर्म के दार्शनिक पहलू का विकास और उसके सामाजिक पहलुओं के विकास का भी वर्णन किया जा चुका है। अब केवल यह पड़ताल करना है कि उसके उन्नति के क्या कारण थे। प्राचीन और मध्यकालीन आस्थाओं तथा रिवाजों के बीच ज्वलंत अंतर के क्या कारण थे। काफी कुछ अंतर के मूल में उस समय के सामाजिक उथल पुथल, धार्मिक टकराव और राजनीतिक हलचल थी। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जैसे जैसे जीवन अग्रसर होता है वैसे वैसे विचार अग्रसर होते हैं। बहुत कुछ तो बौद्धिक क्षेत्र में हुए स्वाभाविक विकास के कारण था। प्राचीन पद्धतियों के बीजों से व्यवस्थाओं का तार्किक प्रस्फुटन था। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि बाद के युग की आवेगपूर्ण भक्ति भगवत गीता, श्वेताश्वर उपनिषद और महायान बौद्ध धर्म की भक्ति का परिणाम थी। ईश्वर की एकता पर बढ़ता हुआ जोर उपनिषदों के प्राचीन एकेश्वरवाद का विस्तार था कि बाहरी आडंबर या जाति का विरोध प्राचीन बौद्ध और जैन धर्म के शुद्धतर रूप की ओर लौटना था। यह सब स्वीकार किया जा सकता है। फिर भी समय बीतने के साथ आस्था की बढ़ती हुई सादगी और उसके भावों की गहनता को ऊपर लिखे कारणों से पूरी तरह स्पष्ट करना कठिन लगता है। ये परिस्थितियां इस बात की ओर इंगित करती हुई प्रतीत होती हैं कि निश्चित प्रवृत्तियों वाली कोई मजबूत ताकत काम कर रही थी, जिसके संदर्भ में हिंदू चिंतन आगे बढ़ता गया और जिसका प्रभाव शीघ्र सक्रिय होकर समय के साथ बढ़ता गया। ऐसे कारण की आवश्यकता का अनुभव बहुत समय से किया जाता रहा है और हिंदू धर्म के इतिहास पर लिखने वाले कई विद्वानों ने इसकी तलाश करने की कोशिश की है। ग्रियर्सन ने इसे बहुत दृढ़ता से अनुभव किया, जैसे कि उसके लेख मॉडर्न हिंदुइज्म एंड इट्स डेट टू द नेस्टोरियंस के बारे में कीथ और कैनेडी की आलोचना के उत्तर में की गई उसकी टिप्पणी से स्पष्ट होता है। माणिक्य वासहर के अनुवाद की भूमिका में पोप भक्ति की दो विशेषताओं का उल्लेख करते हैं जो उसे नई प्रतीत होती है। वे कहते हैं, यहाँ कोई संदेह नहीं है, किंतु विशेष भक्ति की स्पष्ट शिक्षा गीता में दी गई है, किंतु एक शैव की गुरु के प्रति जो एक मनुष्य पवित्र मानवीय दैवी गुणों का शिक्षक है, भक्ति इस भक्ति से या भक्ति की किसी भी पूर्ववर्ती हिंदू अवधारणा बहुत भिन्न है। इसके अतिरिक्त भक्ति या प्रेम पूर्ण पवित्रता शैव पद्धति का मुख्य विचार है और शिव के प्रति उत्साहपूर्ण और स्वयं को नकारने वाले प्रेम और उपासना में सभी धर्म समाहित हैं और यह हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान के परे है। और चूंकि सभी में यह कहने करने की क्षमता है, इसलिए सभी जाति के लोग शैव पद्धति में भक्तों और संतों के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। वास्तव में प्रेम विशेष रूप से सेमेटिक धर्मों की चीज प्रतीत होता है। बार्नेल, वेबर, लोगन, कार्डवेल, हॉपकिंस और भंडारकर और पोप तथा ग्रेयर्सन ने इन परिवर्तनों का कारण दक्षिण में ईसाई समुदायों का होना बताया है। बार्नेल, मैकनिकॉल और एस्टलिन का रपेंटर का लगभग स्पष्ट मत है यह विकास केवल आंतरिक कारणों से था, क्योंकि दक्षिण में ईसाई संपर्क के लिए आवश्यक ऐतिहासिक परिस्थितियां विद्यमान नहीं थीं। किंतु फॉसेट अपनी नोट्स ऑन सम ऑफ द पीपल ऑफ मालाबार में सुझाया कि संभवतः इस्लाम की वहां आवश्यकता थी। उन्होंने लिखा, नंबूतरियों के प्रवक्ता महान शंकराचार्य से जुड़ी जनश्रुति के बारे में कुछ कहना ठीक होगा। जब देश संकट से गुजर रहा था, तब एलिवायु नदी के निकट स्थित कालादी में उनका जन्म हुआ था। वहां के शासक ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और इस्लाम वहां अपने पैर जमा रहा था। ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान होना चाहिए, इसलिए एक विधवा के बच्चे के रूप में शिव ने फिर से अवतार लिया। ब्राह्मणों के द्वारा उसका और उसके पूरे परिवार का बहिष्कार किए जाने की परिस्थितियां और मां के निधन पर अंतिम क्रिया करने में उनके द्वारा एक नायर की सहायता लेना इसी निष्कर्ष की ओर इंगित करते हैं। रिलीजन्स ऑफ इंडिया में पार्थ ऐसा ही तर्क देते हैं। वे कहते हैं, खिलाफत के अरब लोग यात्रियों के रूप में इन समुद्र तटों पर आए थे और उन्होंने अफगानों, तुर्की, मंगोलों और उनके समान धर्मियों के विजेता के रूप में आने के बहुत पहले इन प्रदेशों में व्यापारिक रिश्ता और संबंध स्थापित कर लिया था। अब ठीक इन्हीं भागों में 9वीं से 12वीं सदी में उन महान धार्मिक आंदोलनों का उदय हुआ जो शंकर, रामानुज और आनंद तीर्थ के नामों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं आंदोलनों में से अधिकतर ऐतिहासिक संप्रदाय निकले और हिंदुस्तान में काफी बाद के काल तक इसके समान कुछ नहीं हुआ। यह दोहराना आवश्यक है कि भक्ति और दर्शन की दक्षिणी विचारधारा के अधिकांश तत्व प्राचीन पद्धतियों से ग्रहण किए गए थे, किंतु उनकी समग्रता और उनके विशेष जोर में जो तत्व है वे मुस्लिम धर्म का स्पष्ट आभास देते हैं और इसलिए इस्लामी प्रभाव का तर्क संभावित लगता है। यह सच है कि अभी तक जिन विचारधाराओं की चर्चा की गई है उनमें मिलने वाला प्रमाण पूर्ण रूप से परिस्थिति जन्य है और उधार लेने के लिए तर्क का स्थान कोई सीधा साक्ष्य नहीं ले सकता, चाहे वह भाषा शास्त्रियों हो या अन्य हो। किंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसा कि अलबरूनी लिखता है, हिंदू स्वाभिमानी थे, विदेशी विचारों को आत्मसात करने में वे दक्ष थे और वे ऐसी घटिया नकल करके अपनी प्रतिष्ठा को गिराना नहीं चाहते थे जो सरलता से पकड़ में आ सके। प्राचीन काल में समूची भारतीय संस्कृति का इतिहास इन कथनों की सत्यता प्रमाणित करता है। इस्लाम का प्रभाव प्रारंभिक चरणों में परोक्ष और चुनिंदा था, जैसा कि अभी तक पता चला है। वह मुस्लिम साहित्य के अध्ययन का परिणाम नहीं था, बल्कि यह धार्मिक संतों के मुंह से निकली शिक्षाओं का या उनके अनुष्ठानों और रीति रिवाजों के अवलोकनों का परिणाम था। पिछले अध्याय में इस बात की चर्चा हो चुकी है कि संपर्क का अवसर और प्रभाव के मौके कब आए। उन समुद्र तटों पर ढेर सारे मुस्लिम बसे जहां महान तमिल आचार्यों का उदय हुआ। लोगों को आकर्षित करने की उनमें पर्याप्त शक्ति थी और उन्हें उस इलाके में इतना पर्याप्त सम्माननीय दर्जा प्राप्त था कि वे लोगों से उनका संसर्ग हो सके। इस्लामी विचारों का इतिहास यह बताता है कि किस प्रकार मुस्लिम देशों में ऐसे विचार उभरे जो हिंदू धर्म के अनुरूप थे और जिन्हें बिना हिंदुओं का आघात पहुंचाए प्रस्तुत किया जा सकता था। संपर्क की सामग्री यद्यपि विलक्षण थी, किंतु यह पूरी तरह से विजातीय नहीं थी। इसका परीक्षण करना आवश्यक है, जिससे हम यह जान सके कि हिंदू चिंतन के विकास में यह सामग्री का क्या योगदान दे सकती थी।